अध्याय एक, भाषा। परिभाषा अक्षर, शब्द और वाक्य, इन तीनों के संगठित रूप को भाषा कहते हैं। हम यदि भाषा को एक वृक्ष मान लें तो सबसे छोटी ध्वनि अक्षर उसका मूल, उससे बड़ी ध्वनि शब्द उसका तना तथा वाक्य भिन्न भिन्न शाखा होगी। हिंदी भाषा हमारी राजनीति, हमारा धर्म तथा हमारी सभ्यता उसी अवस्था में बुद्धिगम्य हो जाती है जब हमें अपनी मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान हो। अपनी मातृभाषा को निसहाय, निरुपाय अवस्था में छोड़कर जो नर नारी विदेशी भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि में योग देती है तथा उसकी सेवा सत्कार में रत रहती है, कृतज्ञ है। यदि हमारी हिंदी का साहित्य भंडार रिक्त रहेगा तो वह चाहे कितनी भी सरल, सरस, सुंदर हो, वह इस प्रकार सम्मानित होगा जिस प्रकार एक रूपवती निर्धन भिखारी। भाषा का धन्य ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा सब कुछ तो उसका साहित्य ही है। हिंदुस्तान के बाल की भिन्न बिंदी हिंदी भूतल की स्वच्छ भागीरथी है। साहित्यिक भागीरथी ने अनवरत परिश्रम करके इस स्वर्ग को, मंदाकिनी को, भूतल पर उतारा, तभी तो इसकी जननी देववाणी है। जिस प्रकार गंगा में अनेकानेक सरिताएं, नदियां, नाले समय समय पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी काव्य सरिता का साहित्य गंगा पर भी अन्य भाषा सारणियों का प्रभाव पड़ा है जो समय समय पर इसमें आकर मिलती हैं। किंतु वह प्रभाव उसी सीमा तक है जिस प्रकार गंगा पर अन्य नदियों का, अंततः सब कुछ मिलकर गंगा जल हो जाता है। हिंदी ने अपना प्राकृतिक रूप नहीं बदला, वह ज्यों त्यों की अपनी ही स्वाभाविक गति से बढ़ रही है। दूसरी भाषा के शब्दों को उसने अपने में पूर्णतः समाहित कर लिया है। हिंदी का साहित्य 12वीं शताब्दी से आरंभ होता है। ब्रिज, अवधी तथा खड़ी बोली इसके तीन प्रमुख स्वरूप हैं। हिंदी बहुभाषी भारत देश का प्रथम भाषा है जिसमें भारतीय जन समाज के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा इस लोकतंत्र की स्वतः प्रेरित शक्तियों के आधार पर स्वीकृत और मान्यता मिली हुई है। हिंदी भाषा का उद्भव भी भारत की अन्य अनेक भाषाओं की भांति प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से हुआ है। जिस प्रकार प्राचीन युग में छंदस की भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया, फिर संस्कृत अपने समय की देसी भाषा के सहयोग से प्राकृतिक के रूप में ढली, उसी प्रकार प्राकृतिक ने लोक भाषा से सहायता ग्रहण की। बाद में उससे अद्भुत जनभाषा अथवा लोक भाषा ने बांग्ला, मराठा, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीरी, बिहारी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं का रूप ग्रहण किया। तात्पर्य यह है कि हिंदी भी भाषा के उस विकास क्रम की कड़ी है जिसके अनुसार प्रत्येक युग में साहित्य की रूढ़ भाषा के समांतर कोई ना कोई बोलचाल की देसी भाषा भी रही है, और वही देसी भाषा साहित्य की सद्भाषा को नया जीवन देकर उसे विकसित करती रही है। भारत में यह परंपरा विकसित होते हुए भी छंदस और संस्कृति में हिंदी तक आई है। इसलिए हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में रखकर देखा जाना चाहिए। भाषा एक दृष्टि में अर्थ अमित अखर थोरे तुलसीदास। जो भाव अनेक शब्दों के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उसे एक शब्द के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना एक कला है। इस ढंग के प्रयोग से शक्ति और समय की बचत होती है। अभिव्यक्ति के इस ढंग को समास पद्धति भी कह सकते हैं। समास, तद्धित और कृदंत द्वारा वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त किया जाता है। प्राचीन युग में जब लेखन सामग्री का अभाव था या लेखन आदि के साधन सीमित थे, तब समास पद्धति के माध्यम से विषय या भाव को कंठाग्रस करने में सुविधा होती थी। आज के व्यस्त युग में समय भाव के कारण विस्तृत बात को संक्षेप में कहना उपयोगी और प्रभावपूर्ण होता है। संक्षेप काल में अनेक शब्दों के भावों को व्यक्त करने वाला कोई एक शब्द चुनकर प्रयुक्त किया जाता है ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक बात प्रभावपूर्ण ढंग से कही जा सके। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनके द्वारा पूरे वाक्य या वाक्य खंड का भाव व्यक्त किया जा सकता है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। इधर कुछ वर्षों से भारतीय भाषाओं को हिंदी के विरोध में खड़ा किया जाने लगा है, इसलिए हिंदी में ग्रंथ निर्माण के समय उस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसमें भारतीय भाषाओं और प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों को पर्याप्त स्थान दिया जाए। इसके लिए हिंदी में ग्रंथ निर्माण की इस तरह पुनर्गठित किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं के शब्दों का समावेश मानक हिंदी में किया जाए। भाषा संबंधी अध्ययन और अनुसंधान में वैज्ञानिकता की क्षति पहुंचाए बिना बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों को व्यवहारिकता की दृष्टि में समावेश किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में हिंदी ग्रंथ लेखन अथवा निर्माण पर आधार मानक अथवा परिनिष्ठ हिंदी है। मानक हिंदी की संरचना का मुख्य आधार खड़ी बोली होने पर भी उसमें फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ध्वन्यात्मक व व्याकरणात्मक संरचनाओं में कुछ परिवर्धन हो गए हैं, यानी कुछ नवीन ध्वनियों का आविर्भाव तथा कुछ नए व्याकरणात्मक प्रयोगों का प्रचलन हुआ है। वैसे तो मानक हिंदी के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृति की शब्दावली है, पर इसमें फारसी, अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं के शब्दों की बहुलता है। साथ ही देसी भाषाओं में आए हुए देसा शब्दों का विपुल संख्या भी है। फिर भी बदले हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं के समानार्थी शब्दों के प्रयोग को प्रासंगिक बनाया जाए। जिन तत्वों से मिलकर हिंदी निर्मित हुई है उसमें एक मुख्य तत्व यह है कि उसकी प्रकृति रचनात्मक है, यानी वह अपने ही प्रयत्नों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। यह प्रकृति भारतीय भाषाओं से बहुत कम भाषाओं की है, अतः हिंदी में युगानुकूल शब्द गढ़ने और उनके नए प्रयोगों की क्षमता है। एक बात और, हिंदी के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं में ही नहीं अपितु तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी संस्कृति के शब्द हैं। अतः हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग एक बाहुल्य शुभ लक्षण है। यह स्वाभाविक है कि तत्सम शब्दों में युक्त हिंदी की प्रकृति कुछ ऐसी लोचदार है जो अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेती है। अतः भारत की राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति करने वाले ग्रंथों के निर्माण की पूरी संभावना और क्षमता हिंदी में है।